वही कमरा। कुछ देर बाद श्यामली ट्रे लेकर कमरे में आई। कमरे में नजर गई, बिस्तर खाली था। उसका दिल एक पल को अटका, फिर उसने बाथरूम की ओर देखा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। नल खुला था, विश्वनाथ शायद चेहला धो रहा था। उसने बिना ज्यादा सोचे ट्रे टेबल पर रख दी। कप रखकर वो हल्की सी आवाज में बोली, विश्वनाथ जी चाय टेबल पर रखती है, पी लीजिएगा, मैं रसोई में जा रही हूं बाकी काम करने। आवाज में आदत की शालीनता थी, एक दूरी जो उसने खुद ही बनाए रखी थी। वो मुड़ी उसी वक्त। बाथरूम के भीतर विश्वनाथ ने चेहरे पर पानी डाला। पानी की धार बह रही थी और उसी शोर में उसकी आवाज। वो वहीं रुक गया, हाथ चेहरे के पास ही थम गया। पानी उंगलियों से फिसलता हुआ कलाई तक आ गया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रसोई में जा रही हूं, न जाने क्यों उस एक लाइन में उसे दूरी चुभ गई। उसने नल बंद किया, तौलिया उठाया, दरवाजा खुला। श्यामली तब तक दरवाजे की तरफ दो कदम बढ़ा चुकी थी। विश्वनाथ बाहर आया, तौलिया हाथ में था। चेहरे पर पानी की हल्की नमी अब भी थी, बाल थोड़े बिखरे, सीने की पट्टी गाढ़ी दिखाई दे रही थी, सफेद कपड़े के नीचे उभरा हुआ जख्म। उसने चलते चलते कहा, रुको। श्यामली ठिठक गई। वो पल भर को नहीं मुड़ी, जैसे तय कर रही हो मुड़ना ठीक है या नहीं। कहाँ जा रही हो? विश्वनाथ की आवाज अब पास से आई, काफी पास। वो मुड़ी, रसोई में, उसने सीधे कहा, वहीं चाय पी लूंगी। विश्वनाथ ने तौलिए से चेहरा पोंछते पोंछते उसे देखा। उसकी नजर श्यामली के चेहरे पर नहीं, उसके होठों पर नहीं, उसकी आंखों पर थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। नहीं, उसने कहा, इधर ही आओ। श्यामली हल्की सी मुस्कान दी, औपचारिक। आप पी लीजिए, मुझे काम भी देखना है। वो फिर मुड़ी, तभी ये ऑर्डर है। आवाज में रोब था, लेकिन वो रोब नकली था, खुद उसे भी महसूस हुआ। वो इस वक्त श्यामली से इस तरह बात नहीं करना चाहता था, मतलब ऐसे रोब में, लेकिन उसे लगा ऐसा करने से श्यामली रुक जाएगी। श्यामली एकदम रुक गई, धीरे से उसकी तरफ देखा। उस नजर में हैरानी नहीं थी, बस एक सवाल था। विश्वनाथ ने अगले ही पल महसूस किया कि वो ज्यादा सख्त हो गया, लेकिन अब पीछे हटना भी उसे कमजोर लग रहा था। श्यामली ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से मुड़ी जाने के लिए। तभी ये क्या, विश्वनाथ की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। अभी तो कहा कि यहीं चाय पियोगी, अब फिर जा रही हो? श्यामली ने सांस ली, धीरे से बोली, मेरी चाय रसोई में है, वहीं लेने जा रही थी। बस, उसका बस कमरे में गूंज गया। विश्वनाथ एक कदम आगे बढ़ा। दूरी जो पहले सुरक्षित थी टूट गई, अब वो उसके सामने था, इतना पास कि श्यामली को उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उसने अनजानी में एक कदम पीछे हटना चाहा, पीछे टेबल थी, रुक गई। विश्वनाथ ने तौलिया साइड में रखा, हाथ टेबल के किनारे टिकाया, श्यामली के बिल्कुल पास। अब वो उसके सामने नहीं, उसके चारों ओर था। क्यों भागती रहती हो? उसने धीमे से पूछा, आवाज भारी थी पर शिकायत जैसी। श्यामली की उंगलियां साड़ी के पल्लू में उलझ गईं। मैं भाग नहीं रही, उसने नजर नीचे रखते हुए कहा, बस अपनी जगह जानती हूं। ये शब्द विश्वनाथ को कहीं चुभ गए। उसने थोड़ा झुककर कहा, और तुम्हारी जगह कहाँ है? श्यामली ने नजर उठाई, सीधा उसकी आंखों में। एक पल, कमरे की हवा जैसे रुक गई। जहां आप कहें, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। ये जवाब सीधा था, बहुत ज्यादा सीधा। विश्वनाथ की उंगलियां टेबल के किनारे कस गईं। वो एक पल को खुद से लड़ा, फिर सीधा हुआ, तो बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, यहीं। श्यामली ने चुपचाप कुर्सी खींची, बैठ गई। विश्वनाथ भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन बहुत पास, इतना पास कि उनके घुटने हल्के से छू गए। श्यामली ने तुरंत पैर पीछे खींचे। विश्वनाथ ने नोटिस किया, कुछ नहीं कहा, बस कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर कप नीचे रखा। ठंडी हो रही है, उसने कहा। श्यामली ने अपने कप की तरफ देखा, जो वहां था ही नहीं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी विश्वनाथ ने अपना कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। पी लो, उसने कहा। श्यामली चौंक गई। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं बहुत बातें मत बनाओ, उसने टोका, बस पी लो। वो रुकी, फिर कप थामा, उंगलियां अनजाने में उसकी उंगलियों से छू गईं। एक झटका, दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा। श्यामली ने एक घूंट लिया, चाय गर्म थी शायद हवा से ज्यादा। वो कप नीचे रखने लगी। विश्वनाथ ने कप अभी छोड़ा नहीं था, कप दोनों के हाथों के बीच रुका रहा कुछ सेकंड। श्यामली, उसने पहली बार उसका नाम इतनी धीमी आवाज में लिया। वो देखती रह गई, हाँ, तुम डरती क्यों हो मुझसे? सवाल अचानक था। शामली ने कप छोड़ दिया, हाथ गोद में रख लिए। डर नहीं, उसने कहा, सम्मान है। विश्वनाथ ने हल्की सी हंसी हंसी, बिना खुशी के। कभी कभी सम्मान दूरी बन जाता है, उसने कहा। शामली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखा। उस नजर में अब झिझक नहीं थी, बस एक धीमी सी आंच। विश्वनाथ ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, और कुछ दूरियां जरूरी नहीं होती। उनके बीच अब सिर्फ सांसों का फासला था। शामली की सांस हल्की सी तेज हो गई, वो पीछे नहीं हटी, बस आंखें झुका ली। विश्वनाथ वहीं रुक गया एक पल और, फिर वो सीधा हो गया, कुर्सी पीछे की। जाओ, उसने कहा, काम देख लो। आवाज सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शामली उठी, इस बार उसके कदम थोड़े लड़खड़ाए, दरवाजे तक पहुंची, पीछे मुड़ी। विश्वनाथ उसे देख रहा था, कुछ कहे बिना, कुछ रोके बिना वो बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ, कमरा फिर शांत था। विश्वनाथ ने आंखें बंद की, सीने पर हाथ रखा। घाव अब भी था, लेकिन आज उस दर्द के साथ कुछ और भी जाग गया था, और वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद रसोई के बाहर का गलियारा। शामली तेज नहीं चली, पर उसकी कदमों में अब पहले जैसी सहजता भी नहीं थी। गलियारे की दीवार से हाथ टिकाकर वो एक पल को रुक गई। सीने के भीतर कुछ अजीब सा फैल रहा था, न घबराहट न खुशी, बस एक अनकहा दबाव। उसने आंखें बंद की, विश्वनाथ की आवाज, उसकी नजर, और वो सवाल, तुम डरती क्यों हो मुझसे? उसने धीमी सांस ली, बेवकूफी, वो खुद से बुदबुदाई, फिर साड़ी का पल्लू ठीक किया, कंधे सीधे किए और आगे बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रसोई में मधु चूल्हे के पास खड़ी थी। बहू जी, चाय पी ली? उसने सहज सी आवाज में पूछा। हाँ, शामली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे वो खुद भी पकड़ नहीं पाई। पी ली, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी देर तक एक जगह ठहरी रहीं। मधु ने देखा पर कुछ नहीं पूछा, और कमरे के भीतर विश्वनाथ अब भी कुर्सी पर बैठा था। कप खाली था, कमरा शांत। उसने धीरे से गर्दन पीछे टिकाई, आंखें बंद की, और पहली बार उसने खुद से माना कुछ चीजें अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी।